सोचिए कि एक लगभग 2000 साल पुरानी चिट्ठी मिलती है।
एक ऐसी चिट्ठी जिस पर ना किसी का नाम है और ना पता, है ना?
हाँ बिल्कुल, ना तो भेजने वाले का नाम लिखा है और ना ही इसमें पाने वाले का कोई सटीक पता है। आम नजर से देखें तो ये बस एक पुराना धार्मिक टेक्स्ट लगता है।
सही कहा, पर अगर हम उसके अंदर के सुरागों को ध्यान से देखें तो वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा लगता है।
वही तो, इसके पन्नों के बीच उस दौर के लोगों का डर, उनका सम्मान और सामाजिक बहिष्कार की पूरी कहानी छुपी हुई है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी चिट्ठी को, जिसे लोग हेब्रूज या इब्रानियों के नाम पत्र कहते हैं, उसके छुपे हुए रहस्यों को डिकोड करेंगे।
और हम ये डॉक्टर डेविड ए. डिसिल्वा के लेक्चर नोट्स के आधार पर करने वाले हैं। उन्होंने इस पर बहुत गहरा विश्लेषण किया है।
जी, और हमारा मिशन आज सिर्फ इस एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ना नहीं है, हम एक डिटेक्टिव की तरह उस समाज का पूरा प्रोफाइल तैयार करेंगे।
ये चिट्ठी दरअसल एक टाइम कैप्सूल की तरह काम करती है। हम पहली सदी के समाज और लोगों के मनोविज्ञान का एक ब्लूप्रिंट निकालने वाले हैं,
जो कि आज के इंसान की परेशानियों से बहुत अलग नहीं है।
तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, ये चिट्ठी आखिर थी किसके लिए?
सबसे बड़ा मिस्ट्री यही है, क्योंकि इसमें कोई नाम या एड्रेस तो था नहीं।
वही मैं सोच रही थी, अगर एड्रेस नहीं था तो सदियों से इसके ऊपर टू द हिब्रूज यानी इब्रानियों को ये टाइटल कहां से आ गया?
सदियों तक स्क्राइब्स और लिपिकारों ने अपनी समझ के हिसाब से इस पर अलग अलग हेडिंग्स डाली हैं।
अच्छा, तो ये ओरिजिनल टेक्स्ट का हिस्सा नहीं था? बिल्कुल नहीं, किसी स्क्राइब ने इस पर टू द हिब्रूज रिटन फ्रॉम रोम लिख दिया। उन्होंने ये अजम्पशन इसलिए बनाया क्योंकि इस टेक्स्ट में टेम्पल सैक्रिफाइसेस, याजकों के बलिदान और ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले बहुत गहराई से दिए गए हैं।
तो उनका लॉजिक ये था कि इतनी गहरी यहूदी बातें सिर्फ एक यहूदी श्रोता ही समझ सकता है ना?
एग्जैक्टली, पर डॉक्टर डिसिल्वा यहाँ इस पुरानी धारणा को पूरी तरह पलट देते हैं। उनके मुताबिक शुरुआती चर्च के दौर में सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र होने से ये साबित नहीं होता कि श्रोता सिर्फ यहूदी थे।
ये पॉइंट मुझे थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है।
वो कैसे?
मतलब अगर मैं किसी को एक खत लिखूं जिसमें पूरी तरह से एक खास कल्चर के बारे में बात हो रही हो, तो आमतौर पर वही लोग उसको समझ पाएंगे जो उस कल्चर में पैदा हुए हैं।
आमतौर पर वैसा ही होता, लेकिन फर्स्ट सेंचुरी चर्च का माहौल थोड़ा अलग था। प्रेरित पॉलस और दूसरे लीडर्स के मिशनरी कामों की वजह से गैर यहूदी यानी जेंटाइल लोग भी इस नए धर्म में जुड़ रहे थे।
तो क्या उन गैर यहूदियों को इन यहूदी ग्रंथों की समझ थी?
बिल्कुल, इन जेंटाइल्स का पूरी तरह से रीसोशलाइजेशन हो रहा था। वो हर हफ्ते जमा होते थे और इन ग्रंथों को लगातार सुनते थे। अगर हम गैलेशियंस या वन पीटर जैसी दूसरी चिट्ठियों का उदाहरण लें,
जो कि क्लियरली जेंटाइल्स के लिए लिखी गई थी, है ना?
हाँ, गैलेशियंस में सर्कमसिजन यानी खतने की बहस है। अब यहूदियों के लिए ये कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उनका तो आठवें दिन ही खतना हो जाता था।
राइट, ये समस्या तो उन बड़ों की थी जो बाहर से आए थे।
सही पकड़ा, और वन पीटर उन लोगों से बात करता है जिन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ दी थी, जो एक नॉन ज्यूइश प्रैक्टिस थी। फिर भी इन दोनों किताबों में ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले भरे पड़े हैं।
इसे मैं एक मॉडर्न उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ।
हाँ बताइए।
ये वैसा ही है जैसे आजकल दुनिया भर के लोग जापानीज एनिमे देखते हैं। वो लोग जापान में पैदा नहीं हुए, उनकी भाषा अलग है,
पर वो लगातार एनिमे देखने की वजह से उनका कल्चर समझ जाते हैं।
हाँ, वो उनके त्योहार, उनके खाने और उनके टर्म्स को डीपली समझने लगते हैं। अर्ली चर्च में इन गैर यहूदियों का बिल्कुल यही एनिमे फैंस जैसा रीसोशलाइजेशन हो रहा था।
ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। वो उस टेक्स्ट में पूरी तरह डूब चुके थे, और हिब्रूज के टेक्स्ट के अंदर ही एक ऐसी लाइन है जो इस एनिमे फैन वाले कॉन्सेप्ट को और मजबूत करती है।
ओ, ऐसी कौन सी लाइन है?
हिब्रूज के छोटे अध्याय में शुरुआती शिक्षाओं की एक लिस्ट है। वहां एक फ्रेज आता है, मर्त कामों से पश्चाताप यानी रिपेंटेंस फ्रॉम डेड वर्क्स।
डेड वर्क्स, तो इसका यहूदियों से क्या लेना देना?
वही तो पॉइंट है, अगर ये चिट्ठी सिर्फ यहूदियों के लिए होती तो लेखक कभी भी उनके कानून या परंपराओं को डेड वर्क्स नहीं कहता,
क्योंकि उनके लिए तो उनकी परंपराएं ईश्वर की दी हुई और जिंदा थी, है ना?
बिल्कुल, तो डेड वर्क्स का सीधा इशारा उन जेंटाइल्स की तरफ था जिन्होंने मूर्ति पूजा छोड़कर नया धर्म अपनाया था। उस दौर में गैर यहूदी लोगों के बीच लकड़ी या पत्थर की मूर्तियों को पूजना आम था।
अच्छा, तो उन बेजान मूर्तियों को यहाँ डेड वर्क्स कहा जा रहा है?
हाँ, विजडम ऑफ सोलोमन नाम के एक पुराने टेक्स्ट में एक इंसान की आलोचना की गई है जो अपने हाथों से एक बेजान या डेड थिंग बनाता है और उससे प्रार्थना करता है।
इससे ये साफ हो जाता है कि ये किसी एक धर्म के लोगों का ग्रुप नहीं था, ये एक मिक्स्ड कॉन्ग्रीगेशन थी।
सही बात है। साथ ही इस चिट्ठी के आखिर में लिखा है, दोज फ्रॉम इटली ग्रीट यू। इस एक छोटी सी लाइन से हमें उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन का हिंट मिलता है।
रोम उस वक्त पूरी दुनिया की पावर का सेंटर जो था।
हाँ, तो अब जब हम समझ गए कि ये श्रोता एक मिक्स्ड ग्रुप थे, तो मेरे दिमाग में अगला सवाल कौनता है कि इन लोगों ने अपने इस नए विश्वास के लिए आखिर क्या कीमत चुकाई।
डॉक्टर डिसिल्वा इन श्रोताओं के इतिहास को तीन अलग अलग फेजेस में तोड़कर समझाते हैं।
पहला फेज था उनका कन्वर्जन,
जिसमें उन्होंने अपना धर्म बदला।
हाँ, हिब्रूस के दूसरे अध्याय में इशारा है कि इन लोगों ने शुरुआत में चमत्कार देखे, एक डिवाइन पावर का एहसास किया जिसने उन्हें अपने बाप दादों के देवताओं को छोड़ने का कारण दिया।
ये उस जमाने में कोई मामूली फैसला तो नहीं रहा होगा।
बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा फेज आया सोशलाइजेशन। अपने नए समाज में आकर उन्होंने बैप्टिजम्स, लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स और रेजरेक्शन जैसी बातें सीखी।
नई कम्युनिटी इस नए परिवार का हिस्सा है।
लेकिन इन दोनों फेजेस के बाद आया तीसरा और सबसे दर्दनाक हिस्सा,
जो कि पर्सिक्यूशन यानी सामाजिक बहिष्कार था।
सही कहा, उनका सामाजिक बहिष्कार। और इसको समझने के लिए हमें उस जमाने के ग्रीको रोमन कल्चर की एक रियलिटी समझनी होगी, ऑनर और शेम का कल्चर।
यानी सम्मान और अपमान।
हमारी आज की दुनिया में इज्जत एक एब्स्ट्रैक्ट चीज हो सकती है, पर मैंने पढ़ा है कि उस वक्त ये एक सोशल करेंसी थी।
आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। उस वक्त की सोसाइटी में सम्मान से बड़ा कुछ नहीं था। सेनेका, जो उस दौर के एक महान दार्शनिक थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जो सम्मानजन्य है वो प्यारा है।
तो अगर आपके पास सम्मान है तो आपके पास सब कुछ है।
हाँ, सुरक्षा, बिजनेस और सोशल नेटवर्क, सब कुछ। बिना इज्जत के आप उस समाज में प्रैक्टिकली एक जिंदा लाश थे। और इन नए ईसाइयों के साथ यही हुआ। उनके पड़ोसियों ने उन्हें चौराहे पर पब्लिकली अपमानित किया।
ओ वाओ, उन्हें बाकी समाज के सामने एक तमाशा बना दिया गया।
हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज और बिजनेस छीन लिए गए, इन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। पर हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में इन्होंने इस भयंकर अपमान को खुशी खुशी सहा।
खुशी खुशी? कोई अपना घर बार लुटने पर खुश कैसे हो सकता है?
क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास एक बेटर एंड लास्टिंग पोजेशन यानी एक अनंत दौलत आने वाली है। उनका विश्वास बहुत मजबूत था।
लेकिन एक मिनट, मुझे इस पर्सिक्यूशन का मैकेनिज्म थोड़ा और समझना है। आखिर इनके पुराने दोस्तों और पड़ोसियों ने इन पर इतना जुल्म क्यों किया?
ये बहुत अच्छा सवाल है।
क्योंकि आज के जमाने में तो अगर किसी की प्रार्थना करने का तरीका अलग हो तो हम उसे एक्सट्रीम इंटॉलरेंस कहेंगे। तो क्या सिर्फ अलग देवता को मानने की वजह से जेल हो सकती थी?
आज के चश्मे से ये सच में इंटॉलरेंस लगता है, पर एंशिएंट दुनिया में धर्म और सिविक ड्यूटीज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे।
सिविक ड्यूटीज?
हाँ,
यानी समाज और शहर के प्रति उनकी जिम्मेदारी।
हाँ, एंशिएंट रोम में ये माना जाता था कि शहर को तबाही, बीमारियों और अकाल से बचाने का काम उनके देवता करते हैं। देवताओं को खुश रखना पूरे शहर की ड्यूटी थी।
अच्छा, तो जब इस मिक्स्ड ग्रुप ने अपने पुराने देवताओं की पूजा करनी बंद कर दी,
तो उनके पड़ोसियों को लगा कि ये नए लोग देवताओं को नाराज कर रहे हैं, और अगर देवता नाराज हुए तो पूरे शहर पर आफत आ सकती है।
ओ, तो इसका मतलब उन्हें सिर्फ अलग धर्म वाला नहीं बल्कि एक तरह से राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही माना जा रहा था।
नेशनल सिक्योरिटी का विषय था।
सही बात है, इन्हें समाज का दुश्मन माना गया, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी छीन लेना या इन पर अत्याचार करना समाज की नजर में बिल्कुल जायज था।
बिल्कुल, एंशिएंट सोसाइटी में आज जैसे पुलिस या लॉ की कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं होती थी। जो समाज से बाहर हुआ उसकी जिंदगी बस उसके अपने बलबूते पर थी।
इस कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद ना, अब इस कहानी में एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है।
हाँ, और वो ही ट्विस्ट इस पत्र के लिखे जाने की असली वजह है।
वही मैं सोच रही थी। इन लोगों ने जेल काट ली, अपनी जमीन जायदाद लुटने दी, पब्लिकली बेइज्जत हो गए, और ये सब उन्होंने शुरू में हंसकर सह लिया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? पत्र लिखने की नौबत आई ही क्यों?
यही तो इस पूरी डीप डाइव का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। असली समस्या कोई नया या ज्यादा भयानक अत्याचार नहीं था। पड़ोसियों ने अब उन्हें पीटना या जेल में डालना शायद बंद कर दिया था।
तो क्या शांति हो गई थी?
शांति नहीं, बल्कि उसकी जगह एक कूल डिसरिगार्ड यानी एक लगातार चलने वाले रूखेपन ने ले ली थी।
कोई नई फॉल्स टीचिंग भी नहीं थी जो उन्हें बर्बाद कर रही हो। उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी उनकी फॉल्टरिंग कमिटमेंट
यानी उनके इरादों का ढीला पड़ जाना।
हाँ,
लेखक हिब्रूज 10:25 में इस बात पर परेशानी जताता है कि लोगों ने अब एक साथ जमा होना छोड़ दिया है।
वो लोग अंदर से पूरी तरह थक चुके थे।
एक गहरी थकान जिसमें आप बस हार मान लेना चाहते हैं। इस स्टेट ऑफ माइंड को अगर एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आज के वक्त में अपना स्टार्टअप शुरू करे।
स्टार्टअप, ये एनालॉजी कैसे काम करती है?
शुरू में उस इंसान में बहुत आग होती है, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से लड़ जाता है, अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर देता है।
सही बात है, पूरा जोश होता है।
लेकिन जब 5 साल गुजर जाते हैं और कोई प्रॉफिट नहीं आता, रोज सुबह उठकर वही डेली स्ट्रगल, वही क्लाइंट्स का रिजेक्शन झेलना पड़ता है, तो वो इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है।
और फिर एक दिन वो थक कर वापस लौट जाना चाहता है।
हाँ, वो सोचता है कि ऐसी आजादी से बेहतर मेरी वो पुरानी बोरिंग कॉर्पोरेट जॉब थी, जहाँ कम से कम हर महीने सैलरी तो आती थी, वहाँ एक इज्जत तो थी।
आपने साइकोलॉजी को बिल्कुल ठीक पकड़ा है। ये लोग एग्जैक्टली उस स्टार्टअप फेज वाली थकान से गुजर रहे थे। इन्होंने पुराने शहर की इज्जत छोड़ दी थी, पर जिस नए हेवनली सिटी का इनसे वादा किया गया था वो अभी तक इन्हें मिला नहीं था।
तो वो एक इन बिटवीन स्पेस में अटके हुए थे, ना इधर के ना उधर के।
बिल्कुल, मॉब्स और फिजिकल वायलेंस से बच निकलने के बाद जो चीज इन्हें तोड़ रही थी वो थी रोजमर्रा की सोशल शेमिंग की साइलेंट एग्जॉशन। ये कोई खुली बगावत या रिबेलियन नहीं था।
तो ये क्या था?
ये था ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे अपने मकसद से भटक जाना। उनमें से कई लोग वापस अपने पुराने नॉन क्रिश्चियन पड़ोसियों के पास लौटने का सोच रहे थे, ताकि उन्हें उनका खोया हुआ स्टेटस वापस मिल सके।
ये तो बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसी ड्रिफ्टिंग को रोकने के लिए, इस थकी हुई स्टार्टअप टीम को वापस मोटिवेट करने के लिए, उस लीडर यानी इस चिट्ठी के लेखक ने क्या रणनीति अपनाई?
लेखक ने यहाँ एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड 3 हिस्सों वाली स्ट्रेटेजी अपनाई। सबसे पहला तरीका था डिस्पाइजिंग शेम, यानी अपमान का तिरस्कार करना।
अपमान का तिरस्कार कैसे?
वो चिट्ठी के 11वें अध्याय में उन्हें उनके पुराने हीरोज जैसे अब्राहम और मोसेस की याद दिलाता है, और सबसे बढ़कर खुद जीसस का उदाहरण पेश करता है,
ताकि वो उनसे रिलेट कर सकें।
हाँ, लेखक समझाना चाहता है कि जिसे ये छोटी सी दुनिया शेमिंग या अपमान कह रही है, वो दरअसल एक नोबल कॉन्टेस्ट है, एक डिवाइन ट्रेनिंग ग्राउंड है।
अच्छा, तो वो उनका पर्सपेक्टिव बदलना चाहता था।
एग्जैक्टली, जिस तरह जीसस ने ईश्वरीय सम्मान के लिए दुनिया के अपमान को मिट्टी के बराबर समझा, वही पर्सपेक्टिव इन लोगों को भी अपनाना था। उन्हें अपने दुख का फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना था,
एक तरह से उन्हें ये दिखाना कि उनकी तकलीफ बेकार नहीं जा रही है।
लेकिन सिर्फ दिमाग में सोच बदल लेना काफी नहीं होता ना, इसके आगे लेखक ने क्या प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट दिया?
उनका दूसरा तरीका एंशिएंट रोमन सोसाइटी की एक और जड़ को छूता है, और वो है पैट्रनेज और ग्रैटिट्यूड का सिस्टम।
ये पैट्रनेज का सिस्टम क्या होता था उस वक्त? रोमन कल्चर में कारिस यानी ग्रेस, जिसे हम कृपा कहते हैं, उसके 3 क्लियर स्टेप होते थे। पहला, एक पैट्रन यानी कोई बड़ा और पावरफुल इंसान फेवर देता था।
और दूसरा स्टेप?
रिसीवर उस गिफ्ट को लेता था। और तीसरा स्टेप था कि उसके बदले में जिंदगी भर के लिए उस पैट्रनेज के प्रति ग्रैटिट्यूड या आभार जताता था।
इसका कोई उदाहरण है हिस्ट्री में?
हाँ, दार्शनिक सेनेका ने 3 ग्रेसेस का बड़ा खूबसूरत जिक्र किया है। ये 3 नाचती हुई देवियों की मूर्तियां थीं जो हर रोमन शहर में होती थीं।
उन मूर्तियों में क्या खास था?
एक देवी आगे झुककर कुछ दे रही है, दूसरी उसे ले रही है, और तीसरी वापस पहली की तरफ देख रही है। ये रेसिप्रोसिटी या आदान प्रदान का प्रतीक था।
यहाँ मुझे एंशिएंट और मॉडर्न सोच के बीच का डिफरेंस थोड़ा और डीपली समझना है।
हाँ, पूछे।
आजकल जब हम ग्रेस वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बिल्कुल फ्री गिफ्ट आता है, जिसके बदले में कोई शर्त नहीं होते। पर उस रोमन सिस्टम में ये पेट्रन क्लाइंट का रिलेशनशिप एक्चुअली एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता था।
बिल्कुल सही, एंशिएंट दुनिया में फ्री गिफ्ट जैसा कुछ नहीं था।
ये तो वैसा था जैसे अगर किसी बड़े पॉलिटिशियन या माफिया बॉस ने आप पर कोई एहसान किया तो आप अपनी सारी उम्र उसके कर्जदार हो गए, आपकी लॉयल्टी अब बिक चुकी है। तो क्या लेखक इसी एक्सट्रीम लॉयल्टी की बात कर रहा था?
हाँ, एक बार जब आपने किसी बड़ी हस्ती से पेट्रोनेज ले ली तो वापस पीछे मुड़ना उस पेट्रन के मुंह पर थमाचा मारने जैसा था।
लेखक उन्हें वॉर्न करता है कि सोचो, परमेश्वर ने अपने बेटे के बलिदान के रूप में तुम्हें सृष्टि की सबसे बड़ी ग्रेस दी है।
ओ, तो परमेश्वर को उन्होंने अल्टीमेट पेट्रियन की तरह प्रेजेंट किया। सही, वो सबसे बड़ा पेट्रन है। अगर तुम अब थक कर वापस अपने पुराने दोस्तों के पास जाओगे तो तुम सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं छोड़ रहे, तुम सृष्टि के सबसे बड़े पेट्रन की बेइज्जती कर रहे हो।
और उस दुनिया में ऐसी बेवफाई या अनग्रेटफुलनेस सबसे बड़ा पाप मानी जाती होगी।
एकदम। लेखक उनकी ईश्वर के प्रति लॉयल्टी को उस जमाने के सामाजिक रूल्स के साथ टाई कर देता है, ताकि उन्हें उनकी भारी जिम्मेदारी का एहसास हो।
वो उन्हें उन्हीं के कल्चर के रूल्स याद दिला रहा था। पर एक मिनट, एक अकेला इंसान इस इतने हैवी प्रेशर को कैसे झेल सकता था? यहाँ पर उनका तीसरा एक्शन प्लान सामने आता होगा, है ना?
हाँ, लेखक का तीसरा और आखिरी प्रैक्टिकल तरीका था म्यूचुअल सपोर्ट, यानी एक दूसरे का साथ देना। लेखक जानता था कि इंडिविजुअल आइसोलेशन ही इस ड्रिफ्टिंग का सबसे बड़ा कारण है,
क्योंकि जब आप अकेले पड़ जाते हैं तभी आपके अंदर शक और थकान घर करती है।
इसलिए वो हिब्रूज के पांचवें अध्याय में कंप्लेन करता है कि जो लोग इस नए समाज में पुराने हो चुके हैं उन्हें अब तक आगे बढ़कर नयों का टीचर बन जाना चाहिए था।
पर क्या वो ऐसा नहीं कर रहे थे?
नहीं, वो खुद अभी दूध पीते बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। लेखक उन्हें खुली चेतावनी देता है कि सिंस डिसीटफुलनेस, यानी पाप के छल से बचने का एक ही तरीका है कि आप एक दूसरे के साथी बने।
अगर मजबूत लोग कमजोर लोगों का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो इस रोजमर्रा के पर्सिक्यूशन के दबाव में आकर एक एक करके सब टूट जाएंगे।
सही कहा, ये अकेले सर्वाइव करने की जंग थी ही नहीं, उन्हें एक टाइटनेट कम्युनिटी बनना था।
इस सारी साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल ड्रामा को डिकोड करने के बाद मेरे दिमाग में इस जिग्सॉ पजल का आखिरी टुकड़ा बचता है।
और वो क्या है?
आखिर ये चिट्ठी लिखी कब गई थी? हम इस एंशिएंट टाइम मशीन को किस साल पर सेट करें?
डेटिंग को लेकर स्कॉलर्स के बीच काफी बहस होती रही है। क्लेमेंट ऑफ रोम, जो अर्ली चर्च के एक बड़े लीडर थे, उन्होंने लगभग 96 एडी में लिखे गए अपने एक खत में इस हिब्रूज के टेक्स्ट का हवाला दिया था।
तो इसका मतलब ये 96 एडी से तो पहले ही लिखी गई थी।
हाँ, कुछ स्कॉलर्स की थियोरी है कि ये नीरो के जमाने वाले अत्याचार जो 64 एडी में हुए थे उसके थोड़ा बाद लिखी गई, लेकिन इसमें रोम को डायरेक्ट टारगेट माना गया है, जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है।
तो डॉक्टर डे सिल्वा का इस पर क्या टेक है?
डॉक्टर डे सिल्वा एक बहुत ही सॉलिड और इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल क्लू पकड़ते हैं। उनका मानना है कि ये टेक्स्ट 70 एडी से पहले लिखा गया था।
70 एडी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? उस साल ऐसा क्या गेम चेंजिंग हुआ था जिससे इस चिट्ठी की डेट तय होती है?
70 एडी उस पूरे एंशिएंट वर्ल्ड का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस साल रोमन एम्पायर की फौज ने जेरूसलम पर हमला करके उनका महान टेम्पल पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था।
ओ, टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया था।
हाँ, और टेम्पल के टूटने का मतलब था कि वहां होने वाले सारे बलिदान और परंपराएं हमेशा के लिए रुक गईं। लेकिन जब हम हिब्रूज के टेक्स्ट पढ़ते हैं, जैसे अध्याय 10 की आयत 1, 2 और 11 में,
तो वहां क्या लिखा है?
वहां लेखक याजकों और सैक्रिफाइसेस के बारे में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में बात करता है। वो लिखता है कि हर याजक हर रोज खड़ा होकर वही बलिदान चढ़ाता है।
वेट, प्रेजेंट टेंस में?
हाँ, अगर लेखक ये खत 70 एडी के बाद लिख रहा होता तो जब टेम्पल बचा ही नहीं था वो इस आर्गुमेंट को जरूर यूज करता।
हाँ, वो कहता, देखो उनका टेम्पल और सैक्रिफाइसेस दोनों टूट चुके हैं, इसका मतलब उनका सिस्टम फेल हो गया है, इसलिए हमारा रास्ता सही है।
एग्जैक्टली, पर उसने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा।
अब मैं समझ गए। इसको मैं अगर एक विजुअल एनालॉजी से समझाऊं तो ये वैसा है कि अगर आज मैं एक चिट्ठी लिखूं और उसमें लिखा हो कि रोज सुबह मेरे घर के बाहर घोड़ा गाड़ी वाला आवाज लगाता है।
हाँ, तो इसका क्या मतलब निकालेंगे लोग?
इसका साफ मतलब है कि मैं मोटर कार के आम होने से पहले के जमाने में जी रही हूँ। यहाँ वर्तमान काल एक टाइम मशीन का काम कर रहा है और हमें सीधा 70 एडी से पहले की दुनिया में ले जा रहा है।
एकदम सटीक एनालॉजी है, पर इस पर एक काउंटर आर्गुमेंट भी है जो कुछ आलोचक देते हैं।
अच्छा,
वो क्या कहते हैं?
कुछ आलोचक कहते हैं कि जोसेफस, जो उस सदी के एक मशहूर इतिहासकार थे, और मिशना, जो यहूदी कानून का संग्रह है, उन दोनों में टेम्पल के टूटने के बाद भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हुआ है।
तो उनका कहना है कि शायद हिब्रूज के लेखक ने भी यही किया हो।
सही पकड़ा, लेकिन डॉक्टर डे सिल्वा इस कंपैरिजन को पूरी तरह से खारिज करते हैं। और इस खारिज करने का ठोस कारण क्या है?
कारण उनकी आइडियोलॉजी में छिपा है। जोसेफस और मिशना के लेखकों को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उनका टेम्पल वापस बनेगा। उनके लिए वो टेम्पल भले ही फिजिकल फॉर्म में गिर गया हो, पर उनकी लिविंग मेमोरी में वो हमेशा जिंदा था।
पर हिब्रूज के लेखक का नजरिया तो बिल्कुल उलट था ना?
वही तो बात है, उसकी नजर में जीसस का बलिदान ही आखिरी और परमानेंट सच था। उसके लिए पुराना कवेनेंट यानी पुरानी प्रथा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
जिस सिस्टम को वो ऑब्सोलीट मानता है, वो टूटे हुए टेम्पल को प्रेजेंट टेंस में लिखकर उसकी अहमियत क्यों बढ़ाएगा?
एग्जैक्टली, इसलिए प्री 70 एडी का आर्गुमेंट सबसे ज्यादा मजबूत और लॉजिकल लगता है।
तो आज के इस गहरे विश्लेषण से हमने क्या देखा? हमने ये जाना कि हेब्रूज किसी एक खास रिलीजन के लोगों के लिए एक ड्राई थियोलॉजिकल बुक नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, ये एक गाइड थी।
हाँ, उन थके हुए और मिक्स्ड लोगों के लिए जो अपनी लगातार हो रही बेइज्जती से टूट रहे थे। ये चिट्ठी एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर थी कि अपने मकसद पर कायम रहो, सोसाइटी के तानों और अपमान को अनसुना करो, पेट्रोनेज की डीप लॉयल्टी को समझो और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का सहारा बनो, क्योंकि अकेले लड़ना नामुमकिन था।
सही कहा, और ये चीज साबित करती है कि ह्यूमन नेचर चाहे पहली सदी का हो या 21वीं सदी का, बदला नहीं है। हम सब किसी ऐसी जगह का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां हमें इज्जत मिले,
और जब वहां रोज तकलीफ मिलने लगे तो इंसान अपने पुराने सेफ जोन में वापस लौटना चाहता है। यही थकान इंसान को भटकने पर मजबूर करती है।
बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है।
और इसी दृष्टि के साथ मैं आज एक आखिरी विचार सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहती हूँ। इस पूरी चर्चा से जो एक बात सबसे ज्यादा चुभती है वो ये है कि हिब्रूस के उस एंशंट टेक्स्ट में लोगों को तबाह करने वाली चीज कोई एक्टिव बगावत या खुला रिबेलियन नहीं था।
हाँ, असली खतरा तो भटकने का था।
वही तो, किसी भी तैरने वाले इंसान को नदी में डूबने के लिए किसी चट्टान से टकराने की जरूरत नहीं होती। अगर वो तैराक बस हाथ पैर मारना छोड़ दे तो पानी का नेचुरल बहाव उसे खुद ब खुद किनारे से दूर और गहरी खाई में ले जाएगा। तो जरा सोचिए, कहीं आज की इस इन्फॉर्मेशन हैवी और तेजी से भागती दुनिया की थकान में हम भी तो बिना सोचे समझे बस बहाव के साथ किसी ऐसी दिशा में ड्रिफ्ट नहीं कर रहे जहां हम असल में कभी जाना ही नहीं चाहते थे। सोचिएगा जरूर।